अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय, श्लोक संख्या 49 और 50। मेरे पीछे बोलिए, प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमां स्वतामे यदि जायेरं मृत्युर्वानाम्रियेत चेत् विपर्ययो वाकिं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यय उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापते। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमां सुतामे यदि जायेरं मृत्युर्वानाम्रियेत चेत् विपर्ययो वाक्यं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापते। एक एक बोलिए, दूसरा बोलिए कोई। वैष्णो देवी, दूसरी शब्दार्थ बोलिए। प्रदाय देने का वादा करके मृत्यवे देवकी के लिए काल स्वरूप कंस को पुत्रान पुत्रों को मोचये आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए कृपणाम निर्दोष इमाम देवकी को सुताहा पुत्र मेरे यदि जायेरन उत्पन्न होंगे मृत्यु कंस वा अथवा न नहीं म्रियेत मरना होगा चेत यदि विपर्ययः इसके विपरीत वा अथवा किम क्या न नहीं स्यात् हो सकता है गति ही गति धातु प्रारब्ध की दुरत्यया समझना मुश्किल है उपस्थितः अभी प्राप्त होने वाला निवर्ते रुक सकता है। निवृत्ता देवकी की मृत्यु को रोकने पर पुनः आपते भविष्य में फिर हो सके तो मैं क्या कर सकता हूं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूं। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक कौन कह रहे हैं? वसुदेव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हाँ, अपने आप से बोल रहे हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं, लेकिन अपने आप से ही कह रहे हैं, स्वयं विचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रदाय तो ये है तरीका अपराध से बचने का। वसुदेव जी की आसक्ति नहीं है किसी चीज में, केवल एक ही आसक्ति है, क्या? अपराध से बचने की। अपराध से मैं कैसे बचूं, ये आसक्ति, ये है दिव्य स्थिति भगवान का पिता बनने के लिए। ये योग्यता है। भगवान के पिता कौन बन सकता है, ना? कौन विचार करता है इस तरह से? अपने भोग के लिए विचार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए विचार करते हैं, लेकिन वसुदेव जी का एक ही स्वार्थ है कि मैं सब अपराध से कैसे छूटूं, मुझे अपराध ना लगे, मुझे दोष ना लगे। बाकी किसी की मृत्यु होती है और नहीं होती है तो ये भगवान की योजना के अनुसार जो होना है वो होता रहे, ये मुझे दोष ना लगे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपराध ना लगे मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भावना भक्त की जो भावना है वो ऐसी होती है कि बाकी तो सब अनित्य है, भौतिक संसार अनित्य है और मृत्यु ही मृत्यु हर जगह वो देखता है, हर जगह मृत्यु, हर व्यक्ति के चेहरे में वो मृत्यु ही पढ़ता है कि सब जगह मृत्यु ही मृत्यु है। ये मृत्यु, यहाँ सब लोग मरते हैं, मरते माने मृत्यु के निकट, मरते का मतलब जो मरने योग्य है, हर व्यक्ति मर्त्य है, ये मर्त्य लोक है। तो मृत्यु कोई जो है बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है, साधारण घटना, सामान्य घटना है, क्योंकि अगर दुर्घटना अगर सामान्य हो जाती है तो फिर वो दुर्घटना नहीं कहेंगे, तो सामान्य बात है। भौतिक संसार मृत्यु का स्थान है तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, किसी की भी मृत्यु कभी भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, तो वो आश्चर्य नहीं करते मृत्यु के लिए। अपनी मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अपनी चिंता है वो केवल है अपने को बचाने के लिए कि मैं अपराध से कैसे बचूं, ये चिंता है वसुदेव जी की। तो क्या सोच रहे हैं? प्रदाय मृत्युवे पुत्रान, प्रदाय का मतलब प्रदान करके मृत्यु को, अपने पुत्रों को मृत्यु को मैं प्रदान करूं, मतलब देवकी को अभी वो मारना चाहता है, कंस अभी मारना चाहता है देवकी को, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य कि मैं बचाऊं, ये मेरा कर्तव्य है ना। मेरे सामने अगर कुछ हो रहा है तो अपनी हमें कोशिश करनी चाहिए बचाने की, नहीं तो मुझे दोष लगेगा। तो वसुदेव जी अपने दोष पर विचार कर रहे हैं कि मुझे दोष ना लगे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे सामने कंस उसने क्या किया है, बाएं हाथ से देवकी के बाल पकड़े हैं और दाएं हाथ से तलवार है ना। और वसुदेव जी ने जितनी भी युक्तियां दी हैं कि तुम्हें देवकी का वध नहीं करना चाहिए, अबला है, फिर छोटी बहन है, फिर आश्रिता है, फिर निर्दोष है, सब कुछ बताया। और तुम वीर हो, वीरों के लिए शोभा नहीं देती, वीरों को तो रक्षा करनी चाहिए, फिर अपनी बहन है, फिर अपनी छोटी बहन है, फिर अपनी जो है आश्रित है, अपने शरण में आई है, वीरों को तो रक्षा करना चाहिए, सब कुछ बताया है। लेकिन दुष्ट असुर है उसको स्तब्ध कहते हैं कि किसी बात को भी नहीं मानता हो, और वो देवकी का वध करने के लिए तैयार है। तो अब वसुदेव जी सोचते हैं कि अगर आगे चल करके जो मेरे पुत्र होंगे तो इसको मैं अगर बोल दूं कि भाई तुम्हें आठवें पुत्र से खतरा है तो मैं जितने पुत्र हैं तुमको सौंप दूंगा, और इस बात पर अगर ये देवकी को इस समय छोड़ दे तो मेरा जो है एक ऐसा कार्य बनेगा जिसमें मुझे अपराध नहीं लगेगा, तो मैं अपराध से कैसे छूटूं, है ना। आप इसमें फिर विचार है कि आप जो है एक स्त्री की रक्षा के लिए कितने पुत्रों को आप मरवा रहे हैं। तो वसुदेव जी सोचते हैं कि इसमें मुझे दोष नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कोई संभावना नहीं है कि आगे चल करके क्या होगा। अभी मैं वचन देता हूं भाई जितने पुत्र हैं, तो प्रदाय मित्र में प्रतान मोच एक कृपणा इमाम। तो इस कृपणा को, कृपणा का मतलब है बेचारी बहुत ही जिसके पास शक्ति है उसको कृपण भी बोलते हैं, कृपण माने कंजूस भी होता है, और कंजूस का मतलब यह है कि जो थोड़ी सी संपत्ति में भी बहुत आसक्त हो, चिपका हो। तो कृपण ऐसे व्यक्ति को भी कहा जाता है जिसके पास थोड़ी सी शक्ति है, अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, तो वो भी कृपण इस भावना में। तो अच्छी भावना में देव की कृपणा है, कृपणा स्त्री है, कृपणा कृपण पुरुष को, तो कृपणा है बेचारी, इसके पास तो शक्ति नहीं अपनी रक्षा करने की, तो इस कृपणा को जो है मैं अभी बचा लेता हूं। ये जो है विचार है, इस समय तो मुझे किसी प्रकार भी बचाना है ना, आगे के लिए मैं ये वचन दे करके भाई इसके जो पुत्र होंगे वो तो मैं दे दूंगा है। तो मोच एक कृपणा में माम ये सोच रहे हैं, और वसुदेव जी ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे चल करके मैं इसको धोखा दूंगा और बच्चों को बचा लूंगा, भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वसुदेव जी इतने सत्यवादी हैं कि वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार अभी मैं बचाऊं, आगे जो पुत्र है मैं इसको प्रदान कर दूं। तो मृत्यु, ये कंस को ही मृत्यु सोच रहे हैं, ये मृत्यु है, ये जो है ये वास्तव में ये मृत्यु है, ये है ना। तो ये निंदा की बात है कि मतलब ये जो है केवल मारना जानता है, ये तो किसी को जिंदा करेगा नहीं, है ना, ये तो केवल मारना जानता है, मृत्यु है ये जीवन तो किसी को देगा नहीं, है ना, दुष्ट है। तो इस मृत्यु को जो है मैं अपने पुत्रों को समर्पित करके किसी प्रकार इसकी रक्षा करूंगा। सुतामे यदि जायरन, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हुए, ये भी निश्चित नहीं है कि भी पुत्र उत्पन्न होंगे, सुता ये भी निश्चित नहीं है कि बच्चे पैदा होंगे, लेकिन अगर बच्चे पैदा हुए, अगर बच्चे ही पैदा नहीं हुए तो भी रक्षा हो जाएगी, तो किसको मारेगा। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि अभी जो है मुझे ये करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आगे चल करके बच्चे नहीं हुए तो अभी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा कि मैंने बच्चों को जो है मरवाया, लेकिन अगर बच्चे हुए तो मृत्युर्वाना, तो हो सकता है यही मर जाए, पहले से ही मर जाए, कुछ पता नहीं, मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं इसको कह देता हूं, बच्चे पैदा होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, जितने बच्चे पैदा होंगे तो मैं दे दूंगा, है ना। फिर तो पहली बात तो यह है कि रक्षा, अगर बच्चे नहीं पैदा हुए तो भी रक्षा हो जाएगी, और अगर बच्चे हुए तो हो सकता है यही मर जाए, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है तो उसके लिए सब लोग सोचते हैं कि ये मरे, सब लोग सोचते हैं, है ना, मृत्युर वा ना मृियत चेत, तो ये मृत्यु ही मर जाए, मृत्युर्मान अमृत, ये मृत्यु ही मर जाए, मैंने कंस को मृत्यु कहे, ये मौत ही मर जाए तो बच्चों की रक्षा हो जाएगी, बच्चे पैदा होंगे। और ना मरा न मृत चित, अगर ना मरा तो विपर्य, तो उल्टा भी क्या नहीं हो सकता है, क्या उल्टा नहीं हो सकता है। आकाशवाणी ने कहा कि बच्चा आठवां पुत्र जो है इसको मारेगा, तो हो सकता है उल्टा हो जाए, मैं इसको जो है मतलब सौंप दूंगा लेकिन वो बच्चा ही इसको मार डाले, क्योंकि आकाशवाणी तो हुई है, भविष्यवाणी तो हुई है, तो ये भी हो सकता है, तो फिर मुझे दोष नहीं लगेगा कि मैंने पुत्र को मरवाया। गतिर धातु दुर्त्या, क्योंकि धातु का मतलब विधाता, विधाता की गति बड़ी कठिन है समझना, दुर्त्या तो विधाता की गति कुछ पता नहीं है, एक छोटा सा बच्चा जो है इसको मार दे, ये भी हो सकता है, होता भी है ना, कभी चींटी जो है हाथी की नाक में घुस जाती है तो नाक में दम हो जाता है हाथी के लिए, बड़ा हाथी मर जाता है, एक चींटी हाथी को मार डालेगी, तो कुछ पता नहीं है विधाता की क्या गति है, है? तो भी मुझे दोष नहीं लगेगा मेरा बच्चा इसी को मार दे, है? तो मेरे ऊपर दोष नहीं लगेगा मैंने बच्चे को मरवाया। उपस्थित तो उन्हें मर देता है, तो उपस्थित जो मृत्यु है, विधाता की जो गति है, जो मृत्यु है, तो बड़ी मुश्किल है समझना, उपस्थित तो उन्हें मर देता, आकर के भी चली जाती है मृत्यु, मौत आई और फिर भी बच जाता है कोई व्यक्ति, और मर के भी जिंदा हो जाते हैं कई लोग, उपस्थित होने पर तो मृत्यु जो है आकर के चली भी जाती है, और निवृत्ता प्रणाम, और चली गई और फिर आ जाती है मृत्यु, तो कुछ पता ही नहीं। ये भौतिक संसार का ये जो है मतलब असली चित्र है। जो व्यक्ति ज्ञान की जो है स्थिति में रहता है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान जिसके दिमाग में हमेशा नित्य बना रहता है, तो वो इस प्रकार से सोचता है कि मृत्यु का जो है कुछ भी भरोसा नहीं है ना, जिसकी आई मृत्यु वो बच जाए, और जिसकी मृत्यु चली गई है दूर हो गई है वो मर जाए, कुछ भी बता। आप सोच रहे हैं कि तो बिल्कुल सस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं भाई, ये तो बहुत सुरक्षित है, वही मर जाए, कुछ पता नहीं है ना। एक भक्त थे, उन्होंने जो है मतलब फल खाया था, और वो फल प्रसाद था, और फल प्रसाद था, वो कुछ समय हो गया था, 2-3 घंटे हो गए था, तो कहा चलो ठीक है, कोई भगवान का प्रसाद है कोई बात नहीं, खा लिया, तो उसी में ही फूड पॉइजन हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। तो भक्तों का भी जो है कुछ पता नहीं है, हम लोगों में से है ना किसकी मृत्यु, लेकिन हाँ रक्षा, मृत्यु के बाद भी रक्षा है, ये जो है निश्चित है कि मृत्यु के बाद भी रक्षा होगी भक्तों की, वो अलग बात है, लेकिन मृत्यु में कोई अंतर नहीं पड़ता है कि भाई ये भक्त हैं तो इसलिए इनकी मृत्यु नहीं होगी आज, ये इनकी रक्षा है क्योंकि ये तो भक्त हैं, तो आज का भी जो है निश्चित नहीं है कोई किसी का भी कि किसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यही है कि भक्तों के लिए आशीर्वाद है कि जीव वा मरो वा, तुम जियो या मरो कोई अंतर नहीं, सुरक्षित हो, भक्तों के लिए सुरक्षा है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते भाई ये इतने भक्त थे इनकी मृत्यु हो गई अरे हम फिर भक्ति नहीं करेंगे, ये भक्त बेचारे इतना कर रहे थे इनके लड़का मर गया भाई भक्ति हमें नहीं करना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति करने से जो है हमारी आज मृत्यु नहीं होगी या कल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन भक्ति हमारे साथ जाएगी और क्या जाएगी साथ में, जगह जगह लिखा था सोचो क्या साथ जाएगा, क्या तो सोचो क्या साथ जाएगा, यही जो भक्ति जाएगी आपके साथ, भक्ति साथ में जाएगी इसी में सुरक्षा है, भक्ति करो ये आपके साथ जाएगी। तो वसुदेव जी जो है इस ज्ञान की स्थिति में विचार कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं भक्ति, कि भगवान की दृष्टि में मैं जो है अपराधी ना बनूं, मुझे कैसे अपराध ना लगे, कैसे मैं कार्य करूं कि मुझे अपराध ना लगे, तो वसुदेव जी ये विचार कर रहे हैं। बाकी कोई आसक्ति नहीं है, पत्नी में भी आसक्ति नहीं है, देवती में भी आसक्ति नहीं है, मृत्यु हो जाए या रक्षा हो जाए, मेरा कर्तव्य है, मेरे सामने देवकी का जो है ये वध करने के लिए तैयार है, ये सामने मृत्यु आ गई है मेरे सामने, है ना। तो अपना कर्तव्य मान करके वसुदेव जी जो है विचार कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई भक्त है अभी तबीयत खराब है तो आपका कर्तव्य है कि आप दवाई दो, कुछ विचार करो, डॉक्टर के पास ले जाओ, करो अपना है, प्रयास करना है, तो इसमें आपको जो है दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर ऐसे सोचते हैं कि ठीक है जाने दो, हमें तो जो है अपने से मतलब है, है ना, तो अपने लिए आप सोचते हैं कि मुझे दवाई लेनी है, मुझे अपनी रक्षा करनी है, तो आपको अपने जो निकट है उनके लिए विचार करना है। तो वसुदेव जी इस प्रकार विचार कर रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही ना हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि देववश कुछ भी हो सकता है। ये समझ सकना बहुत कठिन है कि विधाता द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। इस तरह वसुदेव ने निश्चित किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन्न संकट से मारने के लिए अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। ये जो है प्रभुपाद का तात्पर्य है। हमने प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा पढ़ लिया, यहां प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। तो विचार यही है, यही करना विचार। और वसुदेव जी इतने सच्चे, इतने सच्चे हैं कि कंस जैसा जो झूठा और कपटी दुष्ट बदमाश ईर्ष्यालु वो भी विश्वास करता है। और कंस ने इतना विश्वास कर लिया कि ठीक है, इस बात पर कंस इतना जो है मतलब निश्चिंत हो गया कि आपने कह दिया तो ठीक है, उसे निश्चिंत है कि ये भागेंगे नहीं, ये बड़े सच्चे, इतने सच्चे। मतलब अपना चरित्र इतना, प्रभुपाद जी कहते भक्तों का चरित्र इतना मतलब होना चाहिए, शुद्ध चरित्र व्यवहार, कि बाहर के लोग भी जो है विश्वास करेंगे भाई ये नहीं करेगा ऐसा, ये स्कॉन का भक्त है तो ऐसा नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। प्रभुपाद कहते थे कि भक्ता का जो है चरित्र है वो इतना होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए कि लोगों को अवसर ना मिले दोष निकालने का, इतना जो है भक्तों का चरित्र होना चाहिए, ये शिक्षा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी ने फिर धोखा क्यों दिया कंस को। अब ये भी विचार करने की बात है, इतने सच्चे वसुदेव जी कंस भी विश्वास करे तो फिर विश्वासघात क्यों किया वसुदेव जी ने, इसका क्या उत्तर है। आप लोगों के साथ कुछ विचार कर रहे हैं, ये विचार करनी होती है। स्वयं भगवान प्रकट हुए, स्वयं भगवान प्रकट हुए, और भगवान का आदेश, ठीक है, और हाँ वैसे तो ये भी है कि किसी की प्राण रक्षा के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, सात स्थानों में झूठ बोला जा सकता है, प्राण संकटे स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मणार्थम गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्याज्जुगुप्सितम। तो सात स्थानों में झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोलने की निंदा नहीं की गई है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कोई व्यक्ति अपने पर विश्वास करे और जो है पूरा विश्वास करे तो विश्वासघात भी नहीं करना चाहिए, दोनों बातें हैं, है ना। इस संबंध में एक बात पर हमें विचार करना है कि कंस ने तो विश्वास कर लिया, कंस ने विश्वास कर लिया और उस विश्वास के आधार पर वसुदेव जी पहले पुत्र को लेके कंस के पास आए, मतलब कोई उनके ऊपर वसुदेव जी के ऊपर कोई निगरानी नहीं थी कि बच्चा कब पैदा होने वाला है और वो जो है कहीं भाग ना जाए लेकर के, कोई निगरानी नहीं थी, वसुदेव जी खुद ही लेके आए वसुदेव जी को बहुत दुख हो रहा था कि उनके पुत्र की हत्या होने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख हो रहा था कि वे विश्वासघात करेंगे। तो बच्चे को लेके आए और कंस भी इतना संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया उनकी सच्चाई पर, बोला ठीक है ले जाओ, हमें आठवां पुत्र देना, आठवें पुत्र से भय है, आप ले जाओ इसको। कंस ने भी कहा। फिर नारद जी ने सोचा, क्या सोचा, अगर इसके अंदर दया आ गई है तो फिर भगवान को जो है वध करने में बाधा पड़ेगी, ये दुष्ट जो है, जो दया कर रहा है, क्योंकि पहले भी आकाशवाणी जब हुई थी इसीलिए कि देवकी की सेवा कर रहा है कि बहन को जो है ससुराल छोड़ने के जा रहा है कि बहन को जो है कोई कष्ट ना हो, तो भाई जो है ससुराल छोड़ने जा रहा है बहन को, है ना। तो उसी समय आकाशवाणी की, बड़ा मूर्ख है तू, तो तू बड़ा मूर्ख है, तुझे पता नहीं तेरी बहन जिसको तू इतना स्नेह कर रहा है ससुराल छोड़ने जा रहा है, तो इसी का ही आठवां पुत्र जो है तेरा वध करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसका जो है भगवान के माता पिता के साथ में व्यवहार अच्छा ना हो इसको जो है, तो इसलिए आकाशवाणी हुई, है ना। और अब उसको बड़ी दया आ गई, बोला ठीक है ले जाओ। तो फिर नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि तुमने क्या समझा है, आठवां कौन है, आठवां कौन हो सकता है, है ना। तो देवताओं की गणना से जो है पहला भी आठवां हो सकता है, देवताओं की गिनती कभी उधर से पीछे से आगे की तरफ चलती है, आगे से पीछे चलती है, है? तो आठवां कौन है, कुछ पता नहीं आठवां कौन है। तो बात की सबसे जो छोटा है वो पहला, कभी कभी भी पहला वही है, सबसे छोटे को पहला माना जाता है, कभी कभी गिनती होती है भाई सबसे छोटा तो पहले, सबसे छोटे से बड़े तक गिनते हैं, कोई बड़ा सबसे पहला है तो छोटा सबसे अंत में, तो भाई ऐसे तो कुछ पता नहीं है, है ना। और फिर तुमको पता है कि वसुदेव हैं और जितने भी यदुवंश में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये सब क्या है, देवता लोग हैं, ये सब देवता लोग हैं, है ना। और तुम्हारे जैसे असुरों के लिए जो है इनकी उल्टी प्लानिंग चल रही है, उल्टी योजना चल रही है, और भगवान के जो है पक्ष के हैं सब देवता, और जो है असुरों, ये जो समाचार स्वर्ग में भी पहुंच गया कि तुम असुर लोग जो है पृथ्वी के भार बने हो, शिकायत हो गई वहां, वो प्लानिंग हो जी, सब प्लानिंग हो जी है, हो चुकी है, और सब जीव देवता हैं भगवान की सहायता करने के लिए आ रहे हैं, असुरों का जो है भार उतारने के लिए सब देवता लोग हैं, और युद्धवंश में जितने देव बच्चे पैदा हो रहे हैं सब देवता हैं, और जो देवियां हैं देवकी आदि जितनी देवियां युद्धवंश में जो स्त्रियां हैं ये सब देवियां हैं, और ये सब जो है भगवान के पक्ष के हैं ये लोग, है ना। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो नारद जी ऐसे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही जो है आदमी हूं, वहां पर गया था मैं, वहां पर गया था, लेकिन तुम्हारी विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है वो बताने के लिए गया था, पता लगाने के लिए गया था। नारद जी इस तरह से बताते, तुम्हारा ही आदमी हूं, जैसे जासूस होता है ना कोई व्यक्ति, मैं वहां गया था, उधर मैं गया था। कम से कहा अच्छा अब पता चला मुझे। और कंस ने फिर जो है अभी तो बोल दिया था कि ले जाओ मुझे, कोई डर नहीं है, और फिर कुछ भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी कारण नहीं बताया कि भाई मैंने पहले ऐसे बोला था, अब मेरा विचार बदल गया है, क्षमा करो, ये कुछ नहीं। बुलाया पुत्र को और मार डाला। कोई जो सज्जन व्यक्ति होता है वो पहले कुछ कह दिया है तो दूसरी बात बदलता है, तो फिर बताता है कि अभी मेरा विचार ऐसा बदल गया है, कारण बताता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। असुर है, असुरों का कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कहें फिर करें उल्टा, तो उनका लिए, उनके लिए कोई मतलब शिकायत की बात नहीं होती है कि आप शिकायत करें, जो कुछ मैं करूं वही ठीक है, और तुम अगर कुछ शिकायत करोगे मेरे तो तुम्हारी गलती है, तुम शिकायत करते हो, तो मैं जो कुछ करूं वही सही है, असुरों का यही सिद्धांत होता है ना। तो कौन सा कहते हैं, है ना। और फिर नारद जी ने कहा तुम विश्वास ना करो, ये वसुदेव का भी विश्वास नहीं करना है कि सब देवता हैं भगवान के पक्ष के हैं, विश्वास नहीं करना है। तो विश्वास खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, विश्वास खत्म कर दिया, अब वसुदेव जी जो कुछ करेंगे तो विश्वासघात नहीं होगा। समझ रहे क्या आया समझ? नहीं आया समझ? जो विश्वास कर रहा था वसुदेव जी के ऊपर, वो विश्वास खत्म कर दिया नारद जी, विश्वास मत करो। अब वसुदेव जी कुछ करेंगे तो क्या विश्वासघात माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसने क्या किया, वसुदेव जी को कठोर बंधन में डाल दिया, देवकी को कठोर बंधन में डाल दिया, है ना। और जैसे ही पता चला कि अब बच्चा पैदा होने वाला है तो वसुदेव की भी कठोर बंधन में डाल दिया। नहीं तो वसुदेव जी आते जाते थे, देवकी बंधन में थी, वसुदेव जी जेल के बाहर आते जाते थे, है? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जन्म लेने वाला बच्चा, अब वसुदेव को भी कड़े बंधन में डाल दिया। अब वसुदेव जी अगर जाएं निकलें और बच्चे की रक्षा करें तो इसमें विश्वासघात नहीं होगा। अगर मैं आपको चोरी समझता हूँ कि चोरी तुम चोर हो हम विश्वास ही ना करूं तो तुम चोरी करोगे तो उसमें फिर ये नहीं होगा कि भाई क्यों चोरी की, अब चोरी मानते हो तो क्या है? तो वसुदेव जी ने, है ना, तो एक ये भी विचार है ना, प्राण किसी की प्राण बचाने के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। लेकिन एक ये भी है, कि विश्वासघात भी, विश्वासघात का भी दोष ना लगे, तो नारद जी ने ये स्थिति पैदा कर दी कि वसुदेव जी अब अगर कंस से छिप करके जाएं और बच्चे की रक्षा कर लें तो कुछ इसमें दोष नहीं है। तो ये जो है मतलब बातें हैं कुछ विचार करने की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी बोलिए। नहीं, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन का तो मतलब ये होता है, जैसे हमें शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये तो कुछ दूसरी बात लग रही मुझे कि शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है तो खराब है, बैड बार्गेन हमें मिल गया, बहुत खराब जो है क्वालिटी का सामान मिला है, बड़ी खराब क्वालिटी का सामान मिला है। ये कभी जो है बीमार हो जाता है शरीर, है ना, ये परेशानी वो परेशानी, हमेशा दिक्कतें होती है, बैड बार्गेन है, आपका सौदा गलत हो गया। इसका बेस्ट यूज यही है कि आप कृष्ण का भजन करते हो तो जितना भी समय आपका है, जीवन है, हर श्वास में आप कृष्ण का भजन करो, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, इसका तो ये मतलब है ना। और कोई? हाँ जी, हाँ हाँ मृत्यु, हाँ कंस को ही मृत्यु कह रहे हैं। सुता में यदि जाहिरन, यदि मेरे पुत्र अगर पैदा हुए तो मृत्युर्वा न अमृयते चेत, तो ये जो मृत्यु है हो सकता मर जाए, हो सकता ना मरे। अगर यही मर जाए, मृत्यु ही मर जाए, यानी कंस ही मर जाए, अगर ना मरे तो विपर्य हो, तो उल्टा भी हो सकता है कि मेरे पुत्र जो है इसको मार डाले। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी भी हुई है और विधाता की गति बड़ी दुस्तर है, समझना बड़ा मुश्किल है ना। ठीक है ना? और कोई? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो इसमें एक शिक्षा तो हमें ये मिलती है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा चरित्र, कौन बताएगा? हाँ, कि वसुदेव जी सोच रहे हैं, ये अंतिम उन्होंने जो है मतलब निर्णय लिया है, अपने पुत्रों को जो है मैं दे दूंगा, अगर ये जिंदा रहा और मेरे पुत्र हुए तो बस द्योति ने और नहीं सोचा कुछ भी, है ना। और कितना विश्वास था कंस को, कितना विश्वास था, पूरा विश्वास था, 99% नहीं 100%। तो ऐसा चरित्र हो आपका जो प्रभुपाद के आंदोलन के जो भक्त हैं उनका ऐसा चरित्र होना चाहिए। और अगर जो है कोई दूसरा व्यक्ति सोचता है ये भक्त तो जो है कैसे ही है, बोल दिया था मेरे घर में प्रोग्राम करेगा और फिर फोन भी नहीं उठा रहा है, फोन प्रोग्राम भी नहीं किया, आया भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है, कैसे भक्त हैं, तो प्रभुपाद की जो है बदनामी है, प्रभुपाद को आपने कलंकित कर दिया। ये कृष्ण के भक्त हैं, है ना, तो कृष्ण के प्रति भी उसकी फिर जो है श्रद्धा खत्म हो जाएगी, कृष्ण के प्रति भी जो है उसकी जो भावना है श्रद्धा है वो खत्म हो जाएगी। कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं, है ना, तो भक्तों का चरित्र ऐसा होना चाहिए, है ना। अच्छा फिर दूसरा प्रश्न ये है कि वसुदेव जी का जब इतना चरित्र है और उनको भी बड़ी चिंता थी कि अपने सत्य की रक्षा करना है, अपने सत्य की रक्षा करना है, तो फिर वसुदेव जी ने आगे चल करके कृष्ण की रक्षा करने के लिए क्यों धोखा दिया कंस को, क्यों छिप करके गई, इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा। हाँ तो नारद जी ने अच्छा किया ना, नारद जी ने क्या किया, हाँ जी हाँ वसुदेव जी को विश्वासघाती नहीं बनाया, विश्वासघाती नहीं बनाया। अच्छा हाँ हाँ मतलब विश्वास ना करने योग्य बताए, विश्वास ना करने योग्य बना दिया कि विश्वास नहीं करना। हाँ माता जी आपको कुछ कहना है, विश्वास खत्म कर दिया, विश्वास मत करो इन लोग, क्यों विश्वास ना करो, ये सब देवता हैं, हाँ ये सब जो है ये विष्णु के पक्ष के हैं, ये विष्णु जो है तुम असुरों का जो है क्या करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं, और ये सब देवता जो है उनके ही पक्ष के हैं, ये जो है तुम्हारे लिए शत्रु हैं, ये इनको जो है शत्रु समझो। अब ऐसे सोचा जाए तो फिर नारद जी का जो है बड़ा दोष है, वो बच्चे को जो है छोड़ दिया कंस ने, तो उसको मरवाने के लिए आ गई थी, तुम विश्वास ना करो, ये आठवां पुत्र हो सकता है, कोई भी पुत्र हो सकता है, तो इस तरह से ऐसा तो लगता है ना कि नारद जी, लेकिन नारद जी भगवान की योजनाओं को जानते हैं, भगवान की योजनाओं को जानते हैं, और जो छह पुत्र हैं ये कंस यहाँ तो मरने वाले हैं, इनका भी पहले से निश्चित हो चुका है, ये कौन है पहले से, पिछले जन्म के कौन है, ये सब पता है। तो इस तरह से बहुत से कार्य है, हाँ मरीच की छह पुत्र, तो बहुत से कार्य हैं जो कि भक्त अगर करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के नजरों में वो गलत भी मालूम हो सकता है, गलत भी मालूम हो सकता है, लेकिन भक्त लोग करते हैं ऐसे कार्य, लेकिन अपनी तरफ से हमें कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों की नजरों में वो गलत मालूम हो, है ना। लेकिन कोई विशेष स्थिति में कोई विशेष कार्य अगर किया जाए तो वो हो सकता है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना है, ये सब चीजें हैं जो कि हमें विचार करना चाहिए। अच्छा वसुदेव जी, अच्छा हाँ माता जी आप बोलो, सात स्थान है, स्त्रीसु स्त्रियों के साथ झूठ बोल सकते हैं नहीं माता जी ऐसा नहीं है, यहां पर स्त्रीसु का मतलब यह होता है कि जहां स्त्री के साथ कोई संबंध अगर जैसे होते हैं ना बनाए जाते हैं, है ना, तो उसमें अगर झूठ बोला जाए तो वो उसमें दोष नहीं लगता है। जैसे भगवान ने जो है गोपियों को कहा कि हम जल्दी आएंगे वापस, वो नहीं आए, तो भगवान ने जो कहा उस आशा में उन्होंने प्राण धारण किए, तो वो आशा थी। तो इस तरह से जो है ये नहीं है कि भाई स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए, ये मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री के साथ झूठ बोला जा सकता है, वो चीज है। स्त्रीसु नर्म है, नर्म का मतलब हंसी मजाक में झूठ बोला जा सकता है, और झूठ बोलने से आनंद भी आता है ना, तो हम बोलते भी देते हैं कि जो है मतलब ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे जो है मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, तो हंसी के लिए बोला जा सकता है, तो ये भी चलेगा हंसी मजाक में, है ना। तो उसमें हम इनकी भावना को जो है आघात नहीं कर रहे हैं, भावना पर आघात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आनंद के लिए जो है इस तरह से झूठ बोला जा सकता है, हंसी मजाक नर्म है। विवाह है, विवाह में झूठ बोला जा सकता है, शादी नहीं होगी, है ना, तो कई बार जो है इस तरह से झूठ बोला जा सकता है, शादी नहीं होगी, है ना। तो विवाह में एक घटना मैंने सुनी थी, हंसी वाली घटना है, कि एक व्यक्ति 60 साल का व्यक्ति था, अब उसकी शादी करनी थी, है ना, तो जो विवाह का संबंध बनाने वाला था ब्राह्मण, तो भाई इनकी शादी करानी है, तो वो जो है उस गांव में गया कि भाई लड़का कैसा है बताओ, लड़का कैसा है, बोले इसकी आयु है 20 20 20 20 20। तो सबने कहा अच्छा 20 20 20, बोले तीन बार लिखो 20 20 20, बोले कोई बात नहीं 20 ही साल है, चलो तीन बार लिख दिया 20 20 20, है ना। फिर बोले कि भाई चलता कैसे है, चलता है दो आगे दो पीछे। ओहो, तो बहुत मतलब वीआईपी व्यक्ति है, दो आगे दो पीछे। लेकिन वो चलना आता नहीं उसको, तो दो आगे दो पीछे चलते हैं, दो आगे दो पीछे, है ना। और भाई दिखाई कैसे देता है, दिखाई तो ऐसा देता है उसको कि रोशनी की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया दिखाई देता है। इस तरह जब शादी हो गई भाई, अरे तुमने तो क्या बताया था, ये तो 60 साल का, बोले मैंने बताया था 20 20 20 बताया था ना, हैं, और तो दिखाई नहीं पड़ता उसको, तो मैंने बताया था कि रोशनी की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो विवाह में जो है मतलब इस तरह से कई बार चलता है, स्त्री से नर विवाह जा वृत्यर्थ है, अपने जीविका के लिए भी झूठ बोला जा सकता है, जीविका के लिए झूठ। तो प्रभुपाद कहते भी है गीता के तात्पर्य में कि वो कहता है भी मैं आपसे तो जो है मुनाफा नहीं ले रहा हूं, कि मैं आपको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूं, कि मुनाफा नहीं लेगा तो कैसे जिंदा रहेगा वो, तो वृत्यर्थ है, अपनी वृत्ति के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। प्राण संकट है, अपने प्राण के संकट में भी, अपने प्राणों को संकट से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, वृत्यर्थ प्राण संकट है। गो ब्राह्मणार्थ, गाय के लिए झूठ बोला जा सकता है और ब्राह्मण के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। जैसे गाय के लिए एक व्यक्ति जो है सच बोल दिया, है ना, तो जो कसाई था उसने कहा कि महाराज आप तो झूठ बोलते थे, बताओ गाय कहाँ गई, और कसाई के हाथ में जो है छुरा था, गाय को काटना है, उसको पता था महात्मा को कि भाई ये तो काटने के लिए पूछ रहा है कि गाय कहाँ गई, उसने बता दिया कि मैं तो सच बोलता हूँ, तो उसको गाय हत्या का पाप लगा, तो उसको झूठ बोल देना चाहिए, तो कुछ ना बोलना चाहिए, मुझे पता नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना है, है ना, इधर गई उधर गई, और सच नहीं बोलना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, है ना। तो इस प्रकार से नानतम स्याद जुगुस्तम, तो ऐसे में झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये शुक्राचार्य बलि महाराज से कह रहे हैं कि बलि महाराज ने वचन दे दिया है वामन देव को तीन पग भूमि, और शुक्राचार्य कह रहे हैं कि तुमको जो है पता नहीं है कि तीन पग में तुम जो है मतलब तुम्हारा सब चला जाएगा तो भी तुम्हारे तीन पग पूरे नहीं होंगे, तुम जो है तीन पग भूमि इनका तीन पग तो पूरे कर ही नहीं पाओगे, ये दो पग में ही तीनों लोग नाप लेंगे, तो वैसे भी तुम्हारा झूठ हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि तुम मना कर दो, अभी तुमने जो सत्य बोल दिया है मतलब जो वचन दे दिया है उसको आप मना कर दो कि नहीं क्षमा करो हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो झूठ तो ऐसे भी और ऐसे भी झूठा है। फिर प्रत्यर्थ है, अगर तुम्हारा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया तो तुम्हारी जीविका कैसे रहेगी? तो इस तरह से झूठ तुम्हें बोलना चाहिए। तो शुक्राचार्य जो है बलि महाराज को मतलब कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं लगेगा कि तुम वामन देव को जो है मत दो, तीन पग भूमि मत दो, तुम्हारा सब चला जाएगा। तो शुक्राचार्य जो है मतलब नीति है, शास्त्र है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। शुक्राचार्य बहुत बड़े शास्त्री हैं, शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं कि तुम मत करो। लेकिन भगवान वामन देव ने इतना बढ़िया प्रीच किया था बलि महाराज को कि जो है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल अडिग रहे हैं। कि उन्होंने कहा तुम्हारे वंश में जो है जो लोग हुए हैं युद्ध से कभी पीछे नहीं रहे, दान से कभी पीछे नहीं रहे, तुम्हारे वंश में ऐसे ही लोग हैं साफ के साफ। हिरण्यकश्यप की प्रशंसा कर दी, हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर दी, सब जो है मतलब युद्धवीर, दानवीर, कभी दान में पीछे नहीं हटते, है ना, चाहे प्राण चले जाए दान जो है देते हैं, दान के लिए मना नहीं करते हैं, ऐसा कर दिया था। तो फिर बलि महाराज जो है मतलब नहीं नहीं कि सत्य जो है मुझे सत्य बोलना है, सत्य पृथ्वी जो है झूठे का भार सहन नहीं कर पाती है, झूठे का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, चाहे बड़े बड़े पर्वत और समुद्रों का भार हो तो पृथ्वी को कुछ भार नहीं है, झूठे व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी को होता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और शुक्राचार्य इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा कि अब मैं तुझे साथ देता हूँ कि तेरा सब ऐश्वर्य धन संपत्ति सब नष्ट हो जाए, है ना। लेकिन बलि महाराज को चिंता नहीं हुई कि वामन देव को प्रसन्न करना है, तो महाभागवत बन गए, बलि महाराज महाभागवत बन गए, है ना। तो इस एक सत्य के कारण और वामन देव के प्रति जो है उनकी इतनी श्रद्धा हुई थी कि इनको जो है मुझे प्रसन्न करना है, एक ये जो है भाव बलि महाराज के अंदर आ गया था, इनको प्रसन्न करना है। तो इस प्रकार से गुरु की अवज्ञा तक कर दी, उसी में ही वो बहुत बड़े भक्त हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है कोई व्यक्ति अगर गुरु का भी त्याग करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, तो वो जो है, और गुरु भी असली गुरु वही है जो भगवान को प्रसन्न करने की शिक्षा दे, है ना। तो इस तरह से है, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, राधिका रमन की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, गौर नित्याय की जय, कृष्ण बलराम की जय हो।